सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ऋकालीन अल्पीन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अधस्त जानुभी पदभी विचक्र मतुरंजसः। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन, भगवान थोड़े समय के बाद ही अब बिना घोंटों का सहारा लिए हुए पहिया पहिया चलने लगे। जब वो घोंटू घोंटू चलते थे तो पूरे आंगन में घूमते ही रहते थे दोनों भाई। उनका एक जगह पैर टिकता ही नहीं था, और जब थोड़े बड़े हुए पहिया पहिया चलना सीखो, अब उनका पैर घर में नहीं रुकता। अब दोनों भाई कृष्ण बलराम घर से बाहर निकल जाते, अब तो उनके बहुत सारे मित्र हो गए, बहुत सखा, सैकड़ों सखाओं से दोस्ती कर ली उन्होंने, जो अपने समान आयु वाले थे। बहुत सारे उनके बाल सखा हो गए, और भगवान बाल सखाओं से बोले, देखो भाई, तुम बहुत दुबले पतले हो रहे हो ना, घर में तुम्हारी माखन होता है पर मैया तुमको नहीं खिलाती, तुम बता रहे थे कल, तो हमने तुम्हें तरकीब बताई कि घर में चोरी करके खाओ माखन की। अब ये बताओ, तुमने अपने अपने घर में माखन करवे की चोरी सीखी कि नहीं? बोले, कन्हैया पहले तू बताए, तेने अपने घर में पहले चोरी करी भी सीखी नहीं? बोले, मैंने सीखी, तो अपनी रिपोर्ट दो पहले। कन्हैया बोले, देख, जब मेरी मैया सुबह ही सुबह यमुना में पानी भरवे के ले गई, तो मैंने घर में देखा कोई नहीं था उसमें, तो मैंने विचार किया आज ही श्री गणेश करते हैं चोरी का। देखा बड़ा सुंदर माखन का मटका था, ताजा ताजा माखन मैया निकालो, और हमने तुरंत उस मटके में हाथ डाल दिया, और जैसे ही माखन का लौंदा निकाल रहे थे तैसे ही हमें लगा किसी ने हमको देख लिया, क्योंकि मैया के भवन में, नंद भवन, बड़े सुंदर खंभे थे, स्फटिक मणि के खंभे थे, सब उनकी छवि दिख गई, तो वो समझे कि शायद हमको किसी ने देख लिया। पहली बार तो चोरी की भौनी करी, और वो भी पकड़े थे, देख लिया, ये हमारी मैया से कह देगा। तो तोतली तोतली बोलने लगे, देख भैया, तू मेरी मैया से मत कहियो, आधा हिस्सा तू भी ले ले, तू भी खा और हम भी खाएंगे, और मैया से मत बोलियो, जितना मर्जी तो को खानो हो तू भी खा ले। यानी अपनी ही छवि जो शीशा में वो दिख रही है खंभे में, अपनी छवि से बात करने लगे वो। तब तक मैया आएगी सोधा। मैया ने विचार किया, घर में तो कोई है नहीं कन्हैया के अलावा, ये बात कौन सी कर रहे है, ये बातें किन की हो रही हैं? तो कन्हैया की बातें बड़ी मीठी मीठी बातें, मधुर या गिरा बल गया वाक्य, भगवान की वाणी बहुत मीठी है। मैया के कानों मधुर वाणी जा रही, देख भैया, मेरी मैया से मत कहियो, तू भी खा ले, मैया सब सुन रही। मैया के कानों में ऐसा लगा किसी ने अमृत ही उड़ेल दिया था, बड़ी मधुर वाणी थी लाला की। मैया थोड़ी देर और सुनती रही खड़ी होकर के, फिर मैया से नहीं रहा गया, और मैया पूछ, क्यों रे नटखट, क्या कर रहा, चोरी कर रहा है? जब मैं पानी भरवे के ले गई तो उसे पहले की लाला माखन खा ले, नहीं मैया, मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं नहीं खाऊंगा। और जब मैं पानी भरवे गई तो ऐसी भूख लग गई चोरी करके माखन खा रहो और अभी से चोरी करना सीखता है। कन्हैया बोले भैया मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूं। कन्हैया ने विचार किया वही पहली बार तो माखन की चोरी करी, वो पकड़े गए, कैसी बातें बनानी चाहिए, चतुर तो है। बोले मैया देख मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूं, और ये बताया अपने घर की वस्तु कहीं चुराई जाती है। लाला फिर क्या कर रहा था तू? अरे मैया तेने मुखो ऐसे आभूषण धारण करा दिए हैं ये कंगन इत्यादि मेरे हाथों में, ये बड़ी जलन पैदा कर रहे। मैंने सोची कि दही बहुत ठंडो है, जाओ जैसे मैं माखन की मटकी में हाथ डालकर हाथ ठंडे कर रहा हूं। बास्थल मैया, मैया को प्रेम उमड़ आयो, मैया लाला को अपनी गोदी में उठायो और स्तनपान कराने लगी मैया। अब कन्हैया बड़े प्रसन्न, देखो अब तो हमें सफलता मिलेगी, हमने खूब बात बना दी, हमारी चोरी की पतो लगे नहीं मैया को। तो अपने सखाओं से कन्हैया बोले भाई हमको तो सफलता मिल गई, तुम बताओ अपनी अपनी रिपोर्ट किस किस को सफलता मिली। तो जिन जिन बालकन को सफलता मिल गई माखन की चोरी वो तो खूब उल्ले खूब, तो नहीं हमने खूब पेट भर के माखन खाओ, तेने बढ़िया तरकीब बताई, बताओ। और दिन मैया हमको खिलाती नहीं, सब सारा का सारा माखन मथुरा में बेचने के लिए ले जाती, आज खूब पेट भर के माखन खाओ। वो खूब प्रसन्न रह रहे, और जो सखा पकड़े गए उनकी मैया ने पकड़ के बड़ी पिटाई करी उनकी, अभी से तुम चोरी करना सीखते हो, आगे चल के बहुत बड़े डाकू बन जाओगे। तो खूब पिटाई करी मैया ने, तो जिन जिन की पिटाई हुई वो अपनी कमर पे हाथ धरे कह रहे देख भैया हमारी कमर में बहुत दर्द है, रो बड़ी पिटाई करी है मैया ने, तेने अच्छी हमको चोरी करो बताई। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, दोबारा फिर प्रयास करो। देखो जानते हो किसी कार्य को सफल करने में बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, कोई भी कार्य क्यों ना हो और उस कार्य करने में यदि एक बार असफल हो जाए तो निराश नहीं होना चाहिए, फिर प्रयास करो, और फिर सफलता नहीं मिली दोबारा फिर प्रयास करो। तो प्रयास करते करते एक दिन सफलता मिल ही जाएगी, चिंता मत करो, निराश मत हो, और अब तुम मेरे साथ रहो। अब तो सुखदेव गोस्वामी कहते राजन कन्हैया नित्य प्रति अपने सखाओं को साथ में लेते और चोरी करके माखन खाते, जिस घर में घुस जाते हैं उसी घर को पूरा साफ है ना। दो चार सखा थे, सखा नहीं थे, बहुत सारे सखा उनके साथ में थे। अब तो पूरे ब्रज में यह समाचार फैल गया कि कन्हैया जो नंद को लाला है वो माखन की चोरी करके खा रहे, पर गोपियां तो चाहती थी कि हमारे घर में नंद नंदन किसी दिन आवे तो हमारे घर में भी आके माखन खाए। पर गोपियां ने विचार किया कि नंदलाल कितने सुंदर हैं, ऐसा लगता है इनकी सुंदर छवि को देखते ही रहो, पर ज्यादातर देख नहीं पाते ज्यादा देर, ऐसा कोई उपाय हो जो ज्यादा देर तक लाला के दर्शन होते रहे। गोपियां बोली ऐसो कौन सा उपाय हो वो? तो कुछ समझदार गोपियां बोली एक बहुत बढ़िया उपाय हमको सूझो है। बोल कौन सा? हम सब इकट्ठी है के चलेंगी मैया यशोदा के घर और मैया यशोदा को उलानो देंगी, और सब अपनी अपनी लिस्ट बना के ले चलो कि हमारा ये नुकसान क्यों है, हमारा ये नुकसान क्यों है, बहुत लंबी लिस्ट बनाओ जो बहुत देर तक शिकायत करेंगी। उल्हानों देंगी मैया के लिए, जितनी देर उल्हानों देंगी यशोदा मैया के लिए उतनी देर ही लाला के दर्शन करेंगे खूब। सुखदेव गोस्वामी के दर्शन, अब तो सभी गोपियों ने ऐसो विचार करके झुंड की झुंड गोपियां मैया के घर पहुंची। बोली ये मैया यशोदा मैया यशोदा ने विचार कियो, आज हमारे घर में एकादशी, आज एकादशी तो है नहीं जो हमारे घर में कीर्तन हो, कोई उत्सव भी नहीं है जिनको जिनको निमंत्रण हमने दिया हो, आज बिना निमंत्रण के ही इतनी झुंड की झुंड गोपियां हैं घर में, आज कैसे चली आ रही हैं, आज कीर्तन, आज एकादशी भी नहीं जो कीर्तन हो घर पर। तब तक गोपियां पास में पहुंच गई, हे मैया यशोदा, मैया बोली गोपियों आज बड़ी तेजी से बोल रही हो, क्या बात क्या है? बात क्या है? तुम्हारे या लाला ने पूरे ब्रज को परेशान कर रखो है, देखी भी मैं छोटो लगे जी पर है बहुत खोटो, ये पूरे ब्रज की नाक में दम कर रखे जाने। मैया बोली अरे क्या परेशान करे बताओ ना। कुछ गोपियां बोली अरे मैया तो एक कहा बता रहे, अरे मैया कहा बतावे तो कंधिया हमें सतावे, मैया कहा बतावे तो कन्हैया हमें सतावे, मैया कह बतावे तो कन्हैया हमें सतावे, मैया कह बतावे तो कन्हैया हमें सतावे, हमें सतावे हमें सतावे री, कन्हैया हमें सतावे री, मैया का बतावे तो जय हो, मैया हमें सतावे री, मैया कहा बतावे तो कन्हैया हमें सतावे री। तद बेचन को जब हम जावे,
तथि बेचन को जब हम जावे,
मार्ग में आए वे थोई पावे,
मार्ग में आए वे थोई पावे,
हम सी माखन जब रन खावे,
हम से माखन जब रन खावे,
जो हम नाई करे तो मटकी फोरी गिरावे,
जो हम नाई करे तो मटकी फोरी गिरावे,
मैया का बतावे तो कन्हैया हमें सतावे,
मैया कहा बताओ तो कन्हैया हमें सतावे।
झुंड की झुंड गोपी पहुंची और जाके मैया से शिकायत करने लगी, ये बताओ यशोदा रानी तुम तो ब्रज की रानी हो, हम तुम्हारी प्रजा हैं, अब इसी प्रकार से हमें रोज कष्ट मिलेगो, रोज हम सताई जावेंगी तो तुम्हारे ब्रज को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाकर के हम तो बसेंगे अपने। मैया यशोदा बोली अरे देवी हो ऐसी क्या बात है, इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अरे मैया एक दिन की हो तो सहन करें, दो दिन की हो तो सहन करें, रोज रोज तेरा कन्हैया नटखट रोज हमको सताता है। अब बहुत सारी गोपियां गई, कन्हैया भयभीत होकर के मैया के पास खड़े हो गए, मैया को आंचल पकड़े वही मैया के पास में खड़े, कभी गोपियों की ओर देख लेते हैं और कभी मैया की ओर देख लेते हैं, मैया कहीं नाराज तो नहीं रही है? ये सब की सब गोपियां शिकायत लगाए हुए आई हैं, मैया को गुस्सा तो नहीं आ रहा अभी? गोपियां बोली देख मैया एक नुकसान हो तो बताएं, बहुत सारे नुकसान करे, तो कुछ दूसरी कुछ गोपियों का झुंड बोला, अलग अलग गोपियों के झुंड बना के गई काफी, कि तुम अपनी शिकायत करियो और तुम अपनी शिकायत करियो, तुम अपनी शिकायत करियो, खूब देर लगाएंगे शिकायत करने में, तो ज्यादा देर तक लाला के दर्शन होते रहे। तो कुछ गोपियों का झुंड बोला, देख मैया तेरे लाला ने मारो बहुत नुकसान किया है। मैया बोली, का नुकसान किया है? बोली बदसान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्त्रियं स्वादु अति तदिपय कल्पितैस्ते अयोगी मरकान भोक्षण विभजति सच्चिन्नांत भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे से गृह कुपितो याति उपक्रोशतो काम। कुछ गोपियों का झुंड बोला, देख मैया जाने जो हमारो नुकसान करो है, कान खोल के सुन ले। मैया बोली, क्या नुकसान किया है? देख मैया हम तो गैया दुई बजे जा रही, यानी हमारे बछड़े खोल दिए बदसान मुंचन। मैया बोली, ये बताओ तुम जब तुम गैया दुई बजे जाओगी तो बछड़ा पहले खोलनी पड़ेंगे कि नहीं? अरे पहले बछड़ा जब तक नहीं पियेंगे तब तक गैया दूध कैसे उतारेगी? गोपियां बोली, मैया कुछ समय बछड़ा तो यानी खोले लेकिन समय से पहले ही खोल दे। गैया दुबे के समय से थोड़े पहले ही खोल दिए, बछड़े सारा दूध पी गए। और जब हम गैया दुबे के लिए गई और हमने जैसे ही गाय को दुबे बैठी, गैया ने हमारी लात मारी, हम दूर जाके गिर पड़ी। और ये नटखर दूर खड़ा हो गया कोने में, हम तो उल्टी पड़ी है, बाल्टी कहीं पड़ी है, धोनी कहीं हम पड़ी है। और ये खड़ा खड़ा सखाओं के साथ में हंस रहा है और हमको दूर से ऐसे अंगूठा दिखा रहा है, लो बाल्टा भर के ले जाओ, बाल्टा भर के बताओ इनके जो बछड़े हैं, इनके बेटा हैं, इनको दूध पिलाती नहीं तुम खूब पेट भर के दूध पीती हो और ये बेचारे भूखे रह जाते हैं, आज ले जाओ बाल्टा भर के। फिर हमको दूर बैठ करके अंगूठा दिखाता। मैया बोली, बालक है ना, जानता नहीं है, नटखट है, थोड़ा डांट दिया करो। तुम ये मन समझो कि पराओ बालक है, अपने ही बालक समझ के जाको डांट दिया करो तुम। अरे तुम सवन को बालक है, कोई अकेले मेरे ही थोड़ी है। अरे तुम सवन के भाग्यंश वृद्धा अवस्था में एक लाला की प्राप्ति भई है, जे को नटखटपनो करे है तो डांट दियो करो। गोपियां बोली, मैया वो भी करके देख लियो, जैसी हमको डांटती, जिसको हम डांटती हैं, क्रोध करती हैं, तो क्रोध संजात हास, हम इस पर क्रोध करती हैं, हंस जाता है। अब मैया हम तो सच बता रही हैं, जाकी हंसी में ऐसो जादू है, ये हंसो और हमारो क्रोध भगो। कितनो ही क्रोध होए और याकी हंसी पर सारा क्रोध भाग जाता है। अब ये बता दिया, क्रोध ही नहीं होगा तो डांटेंगे कैसे भाई? किसी को डांटने के लिए क्रोध तो भाई, बिना क्रोध के कैसे डांटे? तो जाकी हंसी में ऐसा जादू है, बस सारा क्रोध ही हवा हो जाता है। बताए कैसे डांटे? फिर खूब देर तक ऐसे उड़ानों दे रही और कन्हैया की ओर देख रही है। अब दूसरी गोपी बोली, मैया हमारी सुनो थोड़ी। कुछ गोपियों को झुंड बोला, हमारी भी तो सुन लो। अरे तुम ही बताओ तुम्हारो क्या नुकसान की हो है? स्तेयम स्वादु अति दधिपय कल्पितै स्तेय योगी। स्तेय योगी मैया, तेरो लाला चोरी के योग में बहुत होशियार है। कोई तो ध्यान योग सीखता है, कोई ज्ञान योग सीखता है, कोई भक्ति योग सीखता है, जाने तो चोरी योग सीखा है। चोरी योग इस्ते योगी, इतना होशियार है चोरी करवे में कि हमारे ताजे ताजे माखन को, मीठे मीठे माखन को हम तो निकाल के रखें, संभाल के अपने मटकन में, और जी बहुत सारे सखानों के साथ में जाए और बस छिपे छिपे आवे श्याम लेके ग्वाल बाल हैं, छिपे छिपे आवे श्याम लेके ग्वाल बाल हैं, छिपे छिपे आवे श्याम
देखे ग्वाल वाले चिट्ठे चिट्ठे आवे शाम देखे ग्वाल वाले ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल 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 है
ऐसो है तेरो लाला जी। अबे देख भी सीधो साधो लग रहो है। अबे तो श्रीमान जी ऐसे खड़े माने कुछ जानते ही नहीं पर है बहुत नटखट। जितनो देखे छोटो लगे उतना ही खोटो है। चोरी करवे की ऐसी विद्या सीखिए जाने बड़ी आसानी से जाके चोरी कर ले और सारे मारे मटके खाली कर जाए और मटके खाली करके फोड़ भी जाता उनके। मरकान भोक्षण विभजती सचिन्नांति भांडम भिन्नति। मैया बोली अरे गोपियो तुम्हारो घर में जाके माखन चुरा के खावे हमारे घर में माखन की कोई कमी तो है नहीं। जब मैया तेरे घर में माखन की कमी नहीं है फिर हमारे घर चोरी क्यों करे जे। मैया बोली नटखट है जाए आदत अगर ऐसी पड़ी हुई हो तेरे कितनो माखन खा लियो होगो मेरे घर माखन की कोई कमी तो है नहीं। बता जाओ मुट्ठी भर तो पेट है तेरे छटांग भर माखन खा लियो होगो तो मेरे से दो छटांग ले जा एक पाव ले जा एक सिर ले जा कोई कमी थोड़ी मेरे यहां। फिर यहां माखन के मटका ही मटका भरे रखे। गोपियां बोली मैया अकेलो थोड़े ही खावे। बोले फिर जाने तो पूरे ब्रज की बालकन की फौज इकट्ठी कर ली है बहुत सारे बालक है इसके साथ में। ये स्वयं माखन को खाता है और सब सखान को खिलाता है। इसको पेट भर जाए और सखान को पेट भर जाए तो बंदरों को बुलाता है और जब बंदरों को पेट भर जाए बंदरों को जब पेट भर जाए तो क्या कहता छी 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 या घर की ग्वालनी बहुत भसोट है फूअर है जो कितनों खट्टो दिए बंदर तक नहीं खा रहे देखो मटकी तोड़ दो जाकी। फिर ये मटकी तोड़ देता है। मरकान भोक्षती विभजती यानी बंदरों को बांट करके फिर भिन्नती भांडम भिन्नती फिर वस्त्रों उनको बर्तनों को तोड़ देता है। फिर ये बहुत नटखट है मैया। मैया बोली छुपा के रख दिया करो। देख मैया ऐसो करके देख लियो हमने यदि जाको घर में कोई खावे की वस्तु नहीं मिले द्रव्य अलावे सग्रह कुपतो याति उपक्रोश तोकान। अगर जाको घर में कोई द्रव्य नहीं मिले खावे को तो उन घर वालों पर बहुत क्रोध करता है। इतना क्रोध करता है इस घर में हमारे लिए कोई वस्तु है ही नहीं। और मैया ऐसो नटखटे जब जब कोई वस्तु खाएवे की नहीं मिले तो हमारे बालकों को रुला के भाग जाता है। जानते हो कैसे रुलाता है कि हमारे बच्चे सो रहे हुए तो उनकी चोटी को खाट की पाटी में बांध देता है और फिर नुकुटी लेके कान में कहता है हुआ हुआ क्या कि भाग जाता है। अब बच्चे डर जाते हैं हुआ आ गया हुआ जैसे उठते हैं उनकी चोटी पार्टी बन रही होती है। बच्चे समझते वास्तव में हुआ ने हमारी चोटी को ही पकड़ा है। इतनो नटखट है तेरो लाला। द्रव्य लावे से ग्रह कुबतो याति उपक्रोश तोकान हमारे बच्चों को रुला जाता है फिर ये। और मैया ये घर में माखन तो छोड़े ही नहीं बिल्कुल। मैया बोली एक काम किया करो। तो कहा काम करें देखो गोपियों तुम अपने अपने माखन को ऊपर छींके पे टांग दिया करो ऊपर छींके पे। छोटो सो बाले के जाके हाथ पहुंचेंगे ही नहीं वहां तुम्हारो माखन सुरक्षित बच जाएगो। गोपियां बोली मैया वो भी उपाय करके देख लियो हमने ऊपर कितने छींके पर लटकाए दें ये भौवे नहीं छोड़े।
बोले हस्ताग्राहे रचति विधिं पीठे कोलु कलाद्य छिद्रम हि अंतर्नित वहिना शिक्य भांडे सुतद्वित।
देख मैया होने ऐसो करके देख लियो, अपने अपने माट मटके खूब छींके पे ऊपर रखी देख लिए हमने, और जब ये देखे कि माट मटके दही के माखन के मटके ऊपर रखे हैं जाके दृष्टि पहुंच जाती है। अब उन मटकन को उतारवे को बहुत प्रयास करे, बड़ी कोशिश करे, बहुत उपाय करे, बड़े बड़े उपाय रचता है, क्या क्या ये पीड़ा को रखेगा और पीड़े पे बैठ चढ़ के भी काम नहीं चलेगा तो ऊखल को रख लेगा, ऊखल पर चढ़ जाएगा और फिर भी मटका इसके हाथ में नहीं आएगी मटकी, तो अपने सखाओं के कंधे पर चढ़ जाएगा और फिर भी इसका काम नहीं बन पाया तो पता नहीं कैसे ज्योतिषी है ये, पता ये कैसे पतो लग जाए कि इस मटके में खट्टी छाछ है और इसमें बढ़िया ताजा माखन है, जिसमें ताजा माखन होता है उसी भी नीचे लाठी से छेद कर देगा ये, और बस माखन स्वयं खाएगा, सभी ग्वाल वालों को खिलाएगा और बंदरों को खिलाएगा, सब पूरा माखन साफ कर देता है, कुछ छोड़ता ही नहीं। भैया माखन तो खाता ही है, हमारे नए नए मटके क्या हमारी सासू के हाथ के पुराने जो माट मटके होते उनको भी तोड़ जाता है, बड़ी शिकायत कर रही है। देख रही है किन की ओर? सलोने श्यामरे की ओर देख रही है, कन्हैया की ओर देख रही है और शिकायत कर रही है मैया को। कन्हैया कभी कभी तो बड़े भयभीत हो जाते हैं कि मैया को कहीं क्रोध ना आ जाए तो हमारी अभी पिटाई होगी, फिर कभी गोपियों की ओर देख लेते हैं कब तक ये शिकायत करेंगी, पता नहीं कहां से इतनी घिट्टी हो गई, आ गई है लगता है पूरी झांसी की सभी आ गई घिट्टी करने, है ना, शिकायत करने के लिए। कभी गोपियों की ओर देख लेते और कभी मैया की ओर देखते। मैया थोड़ी भयभीत होने लगी, भाई लगता है आज गोपियां बहुत बड़ी क्रोध में, कहीं लाला को हमारे लाला को गाड़ी न दें, कहीं कहीं सापन दे दें, कहीं कहीं श्रापन दे दें, कहीं कोसे न हमारे लाला को। तो मैया कहती देखो गोपियों, अरे वृद्धा अवस्था में तुम सवन के भाग्यंशों एक लाला की प्राप्ति रही है, हमें तो कोई आशा बालक की हैवे की रही नहीं, कोई आशा नहीं रही, पर तुम सवन के भाग्यंशों भगवान की कृपासों एक वृद्धा अवस्था में एक लाला की प्राप्ति रही है, क्या को तुम कोई गारी मन रही हो, मेरे यहाँ काऊ चीज की कमी नहीं, मेरे यहाँ माखन के भंडार भरे हुए हैं, सब कुछ है मेरे घर में, कोई कमी नहीं, पर क्या करूं जाकू आदत ऐसी पड़ गई है।
अरे गारी मत दीजो, गारी मत दीजो, वो गरीबी नी को जायो,
गारी मत दीजो, वो गरीबी नी को जायो है,
गारी मत दीजो, वो गरीबी नी को जायो है,
गारी मत
जितो तो बिगार कियो आन कहो मोसो तुम,
जितो तो बिगार कियो आन कहो मोसो तुम,
जितो तो बिगार कियो आन कहो मोसो तुम,
जित तो बिगार कियो आन कहो मोसो तुम,
जितो ताऊ बापनु नाही तरसायो हे,
जितो ताऊ बापनु नाही तरसायो हे,
गारी मत दीजो ओ गरीबी को जायो हे,
गारी मत दीजो ओ गरीबी को जायो हे।
मैया बोली देखो गोपियाओं, मैं बड़ी दुखियारी हूं, अरे वृद्धावस्था में एक लाला की प्राप्ति हुई है, तुम जाको कोई कोसियो मती कोई गारी मंदियो कोई साप मंदे डालियो तुम्हारो जितनो नुकसान कियो हो एक किलो तुम्हारो दही खराब कियो हो दो किलो ले जाओ पांच किलो ले जाओ जितनो नुकसान तुम्हारो यानी कियो हो दुगनो दुगनो तिगनो चौगनो पचगनो ले जाओ मेरे यहाँ काऊ चीज की कमी नहीं है तौल तौल के माखन ले जाओ मैया ने मटका के मटका ला करके आंगन रख दी लो बहुत सारा दही है जितनो जाको चाहिए ले जाओ यहाँ से पर मेरे लाला को कोई कोशियो मती मेरे लाला कोई गारी मन गई है। गोपियां बोली देख मैया वो तो बात ठीक है पर तू अपने बालक को थोड़ा हटक तो सही थोड़े संभाल तो सही थोड़ा ऐसे डांट फटका ये बहुत बिगड़ गया है और चोरी करने में इतना होशियार है कि कितनों ये माखन छुपा के रखे वहां भी नहीं छोड़े। मैया बोली अंधेरे कोठे में रख दो अंधेरे कोठे में वहां जाकर दिखे वही नहीं अरे मैया वो भी करके देख लियो वहां भी नहीं छोड़े ये
ध्वंतागारे धति मणिगणम स्वांगम अर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यही ग्रह कृत्ये सुसुभद्रचितः।
गोपियां बोली मैया बोली एक काम करो गोपियां हो अंधेरे कोठरे में रख दो जाको दिखे कोई नहीं। गोपियां बोली मैया वो भी करके देख लियो या को तू ऐसे बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनाती है बढ़िया बढ़िया आभूषण इसके आभूषणों में से प्रकाश निकलता है। कुछ गोपियां बोली नहीं नहीं आभूषणों से ही प्रसाद नहीं प्रकाश नहीं तो स्वांगम अर्थ प्रदीपम श्री राधा गोविंद भगवान की श्री गौर निताई भगवान की स्वांगम अर्थ प्रदीपम मैया या के अंग में से इतनो प्रकाश निकले कि चलती भाई चीटी दिख जाए तो बताए कहां छुपा के रखे। और देख चोरी करे में कितनो होशियार है इतनो होशियार है कि पता नहीं कैसे भेद लगा ले हमारे घर को कैसे भेद लगा ले कि कौन से घर में आज कोई नहीं है और हमारे बालकों से पूछता ये बताओ रे तेरी मैया आज कहाँ है तो बालक कहते हैं हमारी मैया तो गौशाला में गई है दूबे के नहीं गई है तो चल सारे तेरे घर चलते हैं फिर हमारे ही बालक अंशों पतो करके और जो जिस घर में गोपी नहीं होती है अपने घर के काम में लगी भई होती है वही घर में ही घुस जाए और बस पूरा ही घर को साफ कर देता है माखन से कुछ नहीं छोड़ता। और कुछ गोपियां बोली देख मैया कितनो नटखट है जब जाको कोई घर में कोई खाए की वस्तु नहीं मिले तो क्या कहता छी छी ये घर तो बिल्कुल बेकार है इस घर में हमारे खाए के लिए कोई चीज नहीं है क्या घर में तो सखाओं से कहता इसमें सब एकदम मलमूत्र कर दो तो सब सखाओं से हमारे लिपे पुते घर में आंगन में चौका में चूल्हे में सब में सखाओं से मलमूत्र करवा देता है सब घर को बिगाड़ देता है इतनो नटखट है भैया ये और चोरी करे इतनो होशियार है और अभी देखने में एकदम भोले बाबा सो लग रहा है एकदम भोला बाबा मानो कुछ जानते ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन
इतम स्त्री भी सभेने श्री मुखालोकनी भी व्याख्यातार्था प्रेषित मुखी नहीं उपालब्ध वेक्षत।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन इस प्रकार गोपियां उलाना तो दे रही मैया को और देख रही हैं कन्हैया को और उलहानो देते देते गोपियां कन्हैया की कैसी छवि दिख रही है बोले सब है नैन उनके नैन बड़े भयभीत हो रहे हैं कन्हैया के कहीं हमारी पिटाई नहीं है जाए आज इन गोपियों ने तो पता नहीं शिकायत की पूरी झड़ी लगा दी है सबरी शिकायत एकदम खिट्टी करके आई है ये आज जरूर पिटाई होगी तो कन्हैया के नैन बड़े भय से भयभीत हो रहे हैं और गोपियां उलानो देते देते थोड़ी सी हंसी आ गई गोपियों को, कन्हैया की छवि देख करके कि देखो अब कैसी आंखें नचा रहे हैं, डर के मार रहे, थोड़ी सी हंसी आ गई। मैया बोली अरे गोपियां तुम सबकी सब मुखो परेशान करने के लिए आई हो, हंस रही हो। अरे मैया हंसे नहीं तब कर रोवे, नुकसान तुम्हारो है ही, वो फिर क्या करे, पर तेरे जो नटखट की करनी देख के हंस रही है कि वहां तो चोरी कर रहे कितना होशियार है और जहां ऐसो खड़ो है मानो कुछ जाना ही नहीं है, बोलो बाबा। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन ये गोपियों का उल्हाना नहीं था, क्या था ये तो कन्हैया के दर्शन करने का बहाना था, उल्हाना नहीं ये दर्शन करने का बहाना था। गोपियां बहुत देर तक वहां भगवान की शिकायत लगाती रही और उनके दर्शन करती रही, उनके मन में बिल्कुल ऐसी नहीं आ रही कि यशोदा मैया के घर को छोड़ के अपने घर जाए, सब घर के काम धंधे को भूल गई, इतनी उनकी छवि को देख करके मग्न हो गई गोपियां। मैया ने कहा ठीक है अब उनको समझा देंगी, इसको डांट देंगी, जाओ तुम अपने अपने घर जाओ। गोपियां अपने अपने घर आई, अब मैया ने कन्हैया को डांट लगाई, क्यों रे नटखट बताए तेरे पीछे ये द्वे पैसा की ग्वालनी आए गुजरी आए और कितनों हमको डांट की गई है, कितनों उल्टो सीधो बोल के गई है, मोसो हम ब्रज की रानी बताए, और ये सब ग्वालनी आए कितनी उल्टी सूदी हमसे बोल के गई है, सब तेरे पीछे सुनने पड़ी है हमें, मैंने किसी की हिम्मत जो हमसे एक शब्द भी कोई बोल सके, क्यों चोरी करता है, तेरे घर कोई कमी है क्या। कन्हैया बोले मैया मैं थोड़ी चोरी करूं, फिर कौन चोरी करता है, देख मैया ये हमें अपने घर बुला लेती हैं। अरे मैया ओ मैया जब मैं घर से चलूं बुला दे घर में ग्वालनी मोर,
मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालनी मोर,
घर में ग्वालनी मोर बुलावे घर में ग्वालनी मोर,
घर में ग्वालनी मोर बुलावे घर में ग्वालनी मोर,
मैया जब मेरे घर से चल बुलावे घर में ग्वालनी मोर,
मैया जब मैं घर से चलो बुलावे घर में ग्वालनी मोर,
अचक हाथ को झालो देखे,
अचक हाथ को झालो देखे,
मीठी बोले मुझसे देवर कह के,
मीठी बोले मुझसे देवर कह के,
मैया जैसे ही घर से निकलो ऐसे हाथ को झालो लाला जी देवर जी हमारे घर आओ, मीठो मीठो बोल के पहले तो मैं घर में बुलाए ले,
मीठो बोले मुसो देवर कह के,
मीठे बोले मुसे देवर कह के,
निधर कह जाए फिर साकर देखे,
निधर कह जाए साकर देखे,
मीठी मीठी बातन में आए के मैं इनके घर चला जाता हूँ और जैसे इनके घर में पहुंच जाऊं तो अंदर से कुंडी बंद कर लेती, और मैया अंदर से कुंडी बंद करके ये मेरी बड़ी दुर्गति करती हैं, क्या करती हैं तो बता रहे श्रीमान जी,
झपट उतारे कांचनी मुरली ले छिनाए, मैं बालक ये धींगरी मैया मेरो नहीं पार बसा, अरे आप नाचे और मोई नचावे कहा बताओ,
आप नाचे मोई नचावे
घर में पालियो।
ये मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में पालियो।
गुजरिया
मैं भोरो ये चतुर गुजरिया।
एक दिन ले गई मेरी पकड़ अंगुरिया।
एक दिन ले गई मेरी पकड़ उंगरिया।
छोटी सी डकी राम कुठरिया।
छोटी सी डकी राम कुठरिया।
देख मैया एक दिन की तो बात बता रहा हूँ मैं। एक दिन मेरी अंगुली पकड़ के जबरदस्ती घर में ले गई और ले जाके छोटे से कोठे में छोटी सी कोठरी मोख में बैठा दी हो जाने। और मैया जाने तुरंत ही मेरे सामने ला करके माखन की मटकी रख दी। मैया बोली फिर तो बहुत बढ़िया काम की हो ना। अरे पूरी बात तो सुन ले मैया। देख मैया
धरी मटुकिया मोह निकट माखन की तत्काल। माखन दूंगी घनो सो जाकि चींटी भी न माल।
मैया जाने माखन की मटकी लाके रख दी और बहुत सारी चींटी पड़ी भी ऐसी फुअर जे उसको दबा के रखे नहीं बहुत सारी चींटी पड़ी भी वहां में। और मुझसे वो लाला जहां माखन की मटकी की सब चीटी बीन दे बदले में थोड़ा माखन खिलाऊंगी खूब।
धरी मटुकिया मो निकट माखन की तत्काल। माखन दूंगी घनो सो या कि चीटी बीनो लाल। तो मैंने जाकी चीटी बीनी जिन धरत गई सो
कह रहे हैं।
एक दिन अपन घट तेरी मैया।
एक दिन अपन घट पे मैया।
मैं बैठो एक कदम की छैया।
मैं बैठो एक कदम की छैया।
दिन बैठो बल दाऊ भैया।
दिन बैठो बल दाऊ भैया।
मैया एक दिन की बात मैं तो यमुना के किनारे कदम के पेड़ के नीचे छाया में बैठो हो और ऐसा नहीं अकेलो बैठो हो मेरे संग में दाऊ भैया भी था। तो वादन मैया क्या बताऊं तो मैया बोली बतावे ना।
ले पूछी ये गादरी रिपटो या को पाऊं मेरे गोहन पर गई धक्का दीनों श्याम।
मैया मैं तो कदम की छाया में बड़े आनंद से बैठो हो और ये गोपी जल भर ले गई यमुना में। जैसे ही घड़ा भर के बाहर को निकली जाको पैर फिसल गो जाको फिसल गो पैर ये गिर पड़ी धड़ाम से जाको मटकी टूट गई। अब जाकी मटकी टूटी मेरी थोड़ी हंसी निकल गई तो जाने मेरे ऊपर क्रोध करो तेनी धक्का लगायो है।
ले पूछिए घाघरी रिपटो या को पाऊं
मेरे गोहन पर गई धक्का दीनो श्या तो दे दे गुल चादान लाल किए मैं थारो
दे दे गुल चादान लाल किए मैं थारो रहो रो
मैया जब मेरे घर से
घर में ग्वाल हो
ये गोपियां तो को भोरी भारी लगे पर भोरी भारी नहीं ये बड़ी चतुर गोपियां हैं। देखी तेरे मुंह पे तेरी सी और मेरे मुंह पे तेरी सी तेरे मुंह पे तेरी खूब बढ़ाई कर तेरी मैया तुम ऐसी हो और वैसी हो खूब बढ़ाई करे और जैसे ही बाहर निकले तो नहीं छोड़े तेरी बुराई करें ये तो ये मन समझिए खाली मेरी बुराई करवे जावे छोड़े तो नहीं ये तेरी बुराई करे ऐसी ब्रज की ढीठ लगाई है तू इनकी बात को सांची मान ले
इनको पथियारो करे मैं झूठो ये साह
तू इनकी बात को सांच मान लेती है हमें झूठा समझते और ये इनको सांची समझे
इनको पथियारो करे मैं झूठो ये साह चोर नाम मेरो धरो मैया होनन देईया अरे इनने मो संग ऐसी कीने ऐसी करे न कोया
इनने मो संग ऐसी कीने ऐसी करे न
कोया
कन्हैया बात बनाने में खूब होशियार हैं बड़े चतुर हैं चतुर के वो चतुर हैं देख मैया मैं थोड़ी इनके घर चोरी करवे जाऊं ये स्वयं बुला लेती हैं वो को तो बताएं इनकी बात न में आ जाऊं मीठी मीठी बातों में भोली भाली मैया बेचारी आएगी कन्हैया की बात में अच्छा लाला कोई बात नहीं देख मैं तो जावा जैसे डांट रही हूँ तू अब चोरी करवो सीख जाओ तो तेरे चोर नाम पड़ जाओ बताए तू कह रहा तो कुछ चोर चोर कहेंगे कन्हैया बोले हाँ मैया वो को चोर चोर कहती हैं अब बताए मेरे चोर नाम पड़गो तो मेरे कोई विवाह करेगो जब विवाह करेगा कोई आवेगो तो पूछे वो लड़का को नाम क्या है भाई तो कहेंगे चोर है उसका नाम तो नाम सुन के ही भाग जाएंगे वो कोई मेरी शादी करेगा ही नहीं मैं तो जीवन भर कुआर ही रह जाऊंगा फिर मैया है ये गोपियां बहुत चतुर हैं बड़ी चालाक हैं बहुत मोह को परेशान करें कन्हैया ने ऐसी उल्टी मैया को और उनकी उल्टी भर दी मैया के बोली भाली मैया आएगी बातन में मैया बोली ले लाला थोड़े से ये मेवा मिष्ठान खा ले थोड़े कन्हैया बोले देख मैया मोह को मेवा मिष्ठान तो बढ़िया लगे नहीं क्या बढ़िया लगे
मैयारी अरे मैयारी मोही माखन भाग मैया मोरी मोही माखन भावे ओ मैया मोरी मोही माखन नहीं रोचिया ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की वाणी।
ब्रज युवती एक पाहर ठाड़ी सुनत श्याम की वाणी।
मन मन कहती कबहु अपने घर देखो मन 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 कहती कबहु अपने घर देखो मन जो मैया मोरी मोही माँ
मैया मोरी मोही माँ भावे
मैया मोरी
मैया मोरी मोही माँ
कन्हैया अपनी मैया से कह रहे मैया देख सबसे बढ़िया कोई मोई चीज लगे खाए की तो वो है माखन। माखन मोको बहुत प्रिय लगे तू ये मेवा मिष्ठान इत्यादि मेरे सामने लाके रख दे ये कोई वस्तु मोको खाए उतना बढ़िया नहीं लगे जितनो बढ़िया मोको माखन लगे। सूरदास जी कहते हैं ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात। एक गोपी पीछे खड़ी खड़ी मैया बेटा की जो बातें है रही वो गोपी सुन रही कान लगा कि देखो कन्हैया कितना मधुर मधुर बोल रहे हैं और इनको माखन बहुत बढ़िया लगे। आहा कहीं एक दिन मेरे घर कन्हैया माखन खाए बेख ले आवे तो मेरो जीवन धन्य हो जाए। पर मेरे घर कन्हैया आते कहाँ है ऐसो मेरो भाग्य कहाँ है जो मेरे घर कन्हैया माखन खाए के लिए आवे। गोपियां बड़ी इच्छा करती थी कन्हैया हमारे घर माखन खाए के लिए आवे।
आज मेरे अंगना आबो नंदलाल आबो गोपाल तरसन की प्यासी गुजरिया श्याम।
आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आओ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ
अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ
अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ
अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ।
की साची बतिया सुनाबो नंदलाल सुनाबो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
सुनाओ गोपाल सुनाओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन गोपियाएं चाहती थी कि नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे घर आवे और माखन को चोरी करके खावे और हम छुप करके देखें तो अपने जीवन को सफल बनावे। पर ऐसो हमारो भाग्य कहाँ है जो हम गरीबिनी के घर भगवान श्याम सुंदर आवे। गोपियां बड़ी विकल होती थी ऐसो कौन सो दिन होएगो जा दिन नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे घर में आए के माखन को खा रहे। जब ये गोपी पीछे सुन रही तो वाने मन में सोची
मन ही मन कहते कब हो अपने घर देखो माखन खा।
मन ही मन गोपी कह रही है ऐसो कौन सो दिन होगो जा दिन श्याम सुंदर को अपने घर माखन खावतो हो देखो। सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिन मन की जानी। सूरदास जी कहते मेरे प्रभु अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जान लेते हैं, कौन क्या सोच रहा है। कन्हैया समझ गए ये गोपी बहुत अधीर रह रही है, आके घर में जरूर जाना चाहिए। तब कन्हैया दूसरे दिन अपने सखान से बोले देखो सखाओ, आज तो भैया दूसरे मोहल्ला में चलेंगे माखन खाएबो, आज फूटे चौपड़ा को छोड़ दो और दूसरी कॉलोनी में जाकर के आज माखन खाएंगे। कहां चलोगे भैया? अरे हम जो बताएंगे ना। ठीक है भैया जहां तू ले चलोगे ना वहीं हम चलेंगे, कोई बात नहीं। अब कन्हैया सीधे वाई गोपी के घर पहुंचे, प्रभावती नाम की गोपी थी और वो गोपी रोजाना बढ़िया बढ़िया मीठो मीठो माखन निकाल के दही निकाल के अपने घर में बिल्कुल एकदम दरवाजे के सामने रख देती कोठे में कि कन्हैया किसी दिन अब आ भी गए और उनको अगर नहीं दिखो तो ऐसे ही लौट जाएंगे खाली, बिल्कुल सामने रख देती अपने मटके। पर भगवान तो सबके हृदय की बात को जाने और भगवान ने कहा भी है अरे मैंने यह ब्रज में जन्म लियो है तो सभी ब्रजवासियों को सुख देवे के लिए मैंने ब्रज लियो है, सब ब्रजवासियों को सुख करूंगा, सबके घर घर जाऊंगा मैं और सबको सुखी बनाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर आज सखान को लेकर के और वाई गोपी के घर सीधे जा रहे हैं। बिल्कुल गोपी ने देखा आहा आज तो नंदन खूब सखाओं के साथ लगता है मेरे ही घर आए रहे, आज लगता है मेरा भाग्य खुल गया, आज मेरी तकदीर बदल गई। और गोपी जल्दी जल्दी से दूसरे कोठे में किवाड़ की आड़ में छुप के खड़ी हो गई, अगर मैं दिख जाऊंगी तो घर में नहीं घुसेंगे, फिर छुप के खड़ी हो गई गोपी। कन्हैया ने देखा चारों तरफ, बस सखाओं को बोला आ जाओ कोई नहीं है घर में। कन्हैया पहुंच गए और सभी सखान को बुला लियो और कन्हैया ने देखा आहा मटकी तो आज सामने रखिए, कोई ढूंढनी नहीं पड़ी हमको, आज कोई ढूंढना भी नहीं पड़ा। भगवान ने माखन खाए वो शुरू कर दियो, खूब पेट भर के माखन खायो क्योंकि वो तो प्रेम के पुजारी हैं और गोपियां प्रेम के साथ रख देती, कौन सो दिन कन्हैया हमारे घर में आवे। ऊपर ऊपर से गाली देती थी और उल्हानो देती मैया को, पर अंदर तो उनके लड्डू फूटते थे, है ना, कि कन्हैया हमारो माखन चोरी करके खाए, हमारो भाग्य सफल है जाए। गोपी किवाड़ की आड़ में खड़ी है दूसरे कोठे में और कन्हैया माखन खा रहे हैं, सखा भी खूब माखन खा रहे हैं। गोपी गदगद है रही, गदगद है रही है, प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही है, आहा आज मेरो घर पवित्र है गो, आज मेरो जीवन सफल है गो, गदगद है रही है, प्रेम से आंसू की धारा बह रही है। कन्हैया ने स्वयं माखन खायो, सखानों को खिलायो और बंदरन को बुलायो, बंदरों को खूब माखन लुटायो भगवान ने। जब बंदर भी माखन खाए चुके, सब सखा खाए चुके और फिर श्रीमान जी क्या बोले, छी 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 देखो माखन कितना खट्टो है, बंदर भी नहीं खा रहे, जब सबन को पेट भर गो कोई नहीं खा रो, देखो माखन खट्टो बंदर तक नहीं खा रहे, कितनी फुअर है ये गोपी, फोड़ दे जाके मटका को। गोपी से नहीं रहा गया, आज नंद नंदन को पकड़ के अपने हृदय से लगा लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाऊंगी। एकदम दौड़ी दौड़ी, क्यों जी क्या हो रहा है, चोरी करते हो? जैसे गोपी ने फटकार लगाई, गोपी को फटकार को सुन के बंदर तो उल के छत पर चढ़ गए, सखा सब भाग गए, सखा सब भाग गए, बंदर कूद के छत पर चढ़ गए, श्रीमान जी अकेले ही रह गए। और जाके गोपी ने हाथ पकड़ लिया, क्यों जी चोरी करते हो? जब हम तुम्हारी मैया से शिकायत कर भी जाए कि तेरो लाला बहुत चोरी करे, तब क्या कहते हैं, नहीं मैया मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूं, सबकी सब ग्वालिनी झूठ बोलती हैं, आज मालूम पड़ेगी लाला कौन झूठो और कौन सांची है, रंगे हाथ पकड़े गए हो, अब मैया के पास ले जाऊंगी तुम्हें। कन्हैया बोले देख गोपी मेरे मैया के पास मन ले जा, मुझे अपनी मैया से बहुत डर लगे, मेरी मैया मेरी पिटाई करेगी, यह वजह से मेरी मैया के पास मन ले जा। अच्छा तुम्हें मैया की पिटाई से डर लगे तो चोरी क्यों करो फिर? अरे मैंने थोड़ी चोरी करी है। अरे भाई एकदम सफेद झूठ बोल रहे हो, तुमने चोरी नहीं करी, कितने माखन खाए हो ये? तो क्या कह रहे हैं श्रीमान?
अरे ग्वालिन ओ ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, अरे मेरी दुखी नरम कलैया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मोरी दुखे नरम कलैया, दुखे नरम कलैया, मेरी दुखे नरम कलैया, दुखे नरम कलैया, मेरी दुखे नरम कलैया, अरे ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया।
देख ग्वालिन तू कितनी ढींगरी है, मैं छोटो सो बालक हूँ, कोमल कोमल मेरे हाथ है, ऐसे तूने कसके पकड़ लियो है, मानो कितनो बेदर्दी है तू। अरे मेरे हाथ में दर्द है रहे हुए और तो कू नेकू दया नहीं आ रही, छोड़ दे ना। गोपी बोली नहीं छोड़ूंगी यार, रंगे हाथ पकड़ गए हो, ले जाऊंगी मैया के पास। माखन क्यों खाओ फिर?
नहीं तेरो माखन नहीं खायो, मैं तेरो माखन नहीं खायो, अपने घर के धोखे में आयो, अपने घर के धोखे में आयो, मटकी सो नहीं हाथ लगायो, मटकी सो नहीं हाथ लगायो।
देख वाली मैं सच कह रहा हूँ, तेरी कसम खाए की कह रहा हूँ, मैंने तेरो माखन नहीं खायो। गोपी बोली एकदम सफेद सफेद झूठ बोल रही हो, रंगे हाथ पकड़े गए हो और कह रहे हो मेरो माखन नहीं खायो, फिर किसको माखन खायो है? देख ग्वाली मैं तो अपने घर के धोखे में तेरे घर में आए वो, क्योंकि हमारे भक्तन को घर हमारो ही घर हो तो है। हम वो क्या मालूम तेरो तेरे बाप को घर है, तुम तेरे घर नहीं आओ तो हमें
अपने घर के धोखे में आयो, अपने घर के धोखे में आयो, मटकी सोने हाथ लगायो, मटकी सोने हाथ लगायो, आज छोड़ी दे सुगंध खाओ तेरी लहू बलिया, आज छोड़ दे सौगंध खाओ तेरी लहू बलिया, हरि ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया, मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया।
और देख मैंने तेरो माखन नहीं खायो, फिर किसने खायो? तो श्रीमान जी सफाई दे रहे हैं,
खोल की वरिया तू गई पानी, खोल की वरिया तू गई पानी, भूल गई अब क्यों पछतानी, भूल गई अब क्यों पछतानी, मेरी कर रही खेचा तानी, मेरी कर रही खेचा तानी।
वाल्मी तू बेकार मेरी खेचा तानी कर रही है, मैंने तो थोड़े ही देर माखन खाया है, बोले फिर किन्ने खायो है? देख तू इतनी भसोट है फूर है, तू जमुना में पानी भरवे गई, अपने घर की किवारे खुली छोड़ गई।
नी तेरो माखन नहीं खायो, तेरे घर में धसी गैया,
मैं तेरो माखन नहीं खायो, तेरे घर में खुशी से ले
आ मत पकड़े
जय हो मेरी पानी मत पकड़े मेरी बहिया मेरी
कन्हैया बोले देख ग्वालिनी तेरो माखन मैंने थोड़ी खायो है तू ऐसी भसोट है तो अपने घर को ही होसना है कि बारे खुली रह गई बिल्ली लुकाएगी तेरे माखन को वही माखन खाएगी और मेरे वैसे ही तू जिम्मे पड़ गई है मेरी फालतू खेचा तानी कर रही है कि मैया के पास ले जाऊंगी मैया के पास ले जाऊंगी बताए मैंने थोड़ी थोड़े माखन खायो है। गोपी बोली आज एक बहानो नहीं चलने दूंगी आज तो रंगे हाथ पकड़े गए हो मैंने कूपनी आंखें से देखे हो आज तो मैया के पास ले ही जाऊंगी कन्हैया बोली मेरी मैया के पास मन ले जाना नहीं ले जाऊंगी कन्हैया ने खूब मने करी गोपी नहीं मानी फिर बोले ठीक है होई सो देखी जाए ले चल भाई क्या करें फिर अब गोपी कन्हैया को हाथ पकड़ के मैया के पास ले जा रही है जैसी नंद भवन के पास पहुंचे बारी नंद जी दूर से ही दिख गए नंद महाराज उनके जेठ लगते नंद महाराज व गोपी के जेठ जी लगते तो पहले ये प्रथा है कि पहले गांव की माताएं जेठ जी को देख करके एक बहुत लंबो घूंघट काटती तो जैसे ही गोपी ने घूंघट काटो कन्हैया ने विचार किया अच्छो मौको लगे हुआ बोले अरे गोपी देख बहुत देर से मेरे हाथ पकड़े भैया मेरे हाथ में दर्द है छोड़ देना गोपी बोली नहीं छोड़ूंगी आज तो मैया के पास ले जाए कि छोड़ूंगी ठीक है नहीं छोड़ी तो बहुत देर से हाथ पकड़े भरे दर्द है रो मेरे हाथ में दूसरा हाथ पकड़ ले मेरे हाँ ये बात ठीक है दूसरा हाथ लाओ फिर बाई के बालक को बुला इधर आ रहे बाई गोपी के बालक उनको सखा था उनके सखा सब उनकी बात को मानते इधर आ बाई को बालक बुलाई लियो गोपी बेचारी घूंघट काड़े भाई वान तो देख नहीं पाई कहते दूसरा हाथ पकड़ ले मेरे तो दूसरे हाथ के धोखे में बाई के बालक को हाथ पकड़े दियो चालाक तो है ही वो और गोपी को मालूम नहीं पड़ी बोली दूसरा हाथ पकड़े कन्हैया को ले जा रही हूं और बड़े जोश में जा रही आज मैया को बताऊंगी मैया एक दिन हमारी सांच ही नहीं मानती अरे गोपियो तुम सबकी सब झूठ बोलती हो मेरे घर कोई माखन की कमी है सो मेरे लाला चोरी करे को जाए वो आज मालूम पड़ी मैया सोदा को रंगे हाथ पकड़ के ले जा रही हूं लाला को मैया जैसी नंद भवन के पास पहुंची अरे मैया सोदा मैया ने विचार किया गोपी आज बड़े जोर शोर से आ रही है जरूर कदार में कारो दिखे बड़ी क्रोध में आ रही है गोपी अरे गोपी इतने जोर से क्यों बोल रही है क्या बात है अरे मैया अब तुम जोर से कहो तो बताओगी बताओ तुम्हारो लाला ने कितनो हमारे ब्रज में नुकसान किया है रोज नुकसान करे आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं तुम कहती थी देखो गोपियो मैं तुम्हारी बात को जब सांची मानूंगी जब तुम जाकर रंगे हाथ पकड़ लोगी तब सांची मानूंगी आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं मैं मैया बोली गोपी तेने भांग तो ना खा रखी है बताए मेरो लाला मेरे पास में खड़ो वो और कन्हैया पहले ही पहुंच गए अपनी मैया के पास मैया को वहां चल पकड़े खड़े भे वहां एकदम बिल्कुल भोले भाले की तरह मानो कुछ जानते ही नहीं है मैया बोली बताओ मेरे लाला को काय को दोष दे रही है मेरे लाला मेरे पास में खड़ो है और कह रही है कि तेरे लाला ने चोरी करी है रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं मेरे लाला मेरे पास में खड़ो है वो गोपी बोली अच्छा तेरे लाला तेरे पास में खड़ो है तो मेरे हाथ में कहा मेरे लाला है देखिए जी मैया बोली तेरो ही लाला है थोड़ा घूंघट उठा के देख ले कि ना को लाला है अब गोपी ने घूंघट उठा के देखो देखो मेरे ही लाला मरी के तू मेरे हाथ में कब कहां से आएगो गोपी बहुत शर्मिंदा है गई और कन्हैया दूर खड़े है कैसे अंगूठा दिखाने ले तो ते मने करी मैंने मेरी मैया के पास मन ले जा एक नए मानी तेने नए मानी तेने तो अब की तेरो बेटा बन गो और देख सुन ले कान खोल के अगर दोबारा ऐसो करेगी ना तो अब की तेरो बेटा बनो दोबारा ऐसो करेगी तो खसम बन जाऊंगो खसम अब गोपी शर्मिंदा है कि तुरंत घर को ही भाग आई वो रुकी नहीं बिल्कुल शर्मिंदा है कि बिचारी सुखदेव गोस्वामी कहते राजन इस प्रकार पूरे ब्रज में कन्हैया हर किसी घर जाते थे, सबको सुखी बनाते थे भगवान श्याम सुंदर। और सभी ब्रजवासियों को, सभी गोपियों को ऐसा लगे कि लाला ये हमारो ही लाला है। अपने बालकों से इतना प्रेम नहीं करती ब्रज की गोपियाएं जितना प्रेम नंदनंदन श्याम सुंदर से प्रेम करती थी। सभी ब्रजवासी बड़े आनंद में रहते थे। भगवान श्याम सुंदर नित प्रति नई नई लीलाएं करते थे। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन,
एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णो मृगं भक्षित वानित मात्रे निवेदयन्।
सुखदेव गोस्वामी, एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकः, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने बलराम के साथ और बाल बालों के साथ खेल रहे थे, खेल यमुना के किनारे। और कन्हैया ने खेलते ही खेलते क्या खेल रहे थे जीव गोस्वामी लिखते हैं गोपाल चंपू में कि सब बालक ग्वाल बाल मिट्टी के घर बना रहे थे, मिट्टी के घर है ना, छोटे छोटे बालक मिट्टी के घरौंदा बना रहे थे, घरौंदा तो सब बढ़िया बढ़िया घर बना रहे थे। ये कन्हैया भी घर बना रहे, जैसे ही घर बनाते घर टूट जाता, इनका मिट्टी खिसक जाती घर फूट जाता। और सवन सखन के बढ़िया बढ़िया घर बन गए मिट्टी के, कन्हैया बनावे मिट्टी खिसक जाए इनको घर टूट जाए, बार बार खूब बनावे। अब श्री राम मन शोक सभी अब कन्हैया को देखे खूब खिलखिल के हंस रहे हैं, अरे कन्हैया तू क्या बनाए सके। जीव गोस्वामी कहते हैं, अरे जिनके संकल्प मात्र से अनेकों अनेकों ब्रह्मांड बन जाते हैं, केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है और संकल्प मात्र से सब बिगड़ जाते हैं, और वो भगवान मिट्टी का घरौंदा बना रहे हैं। ये भगवान की क्या मानवीय लीला है। जो बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते, मोहियंत या तो सूर्या, बड़े बड़े देवता भी भगवान की लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते। जब कन्हैया का घरौंदा ठीक से नहीं बनता तो कन्हैया ने क्या काम किया, सबन के घर तोड़ दिए ना, सबन के घर तोड़ दिए। अब सब बालक बड़े नाराज है गए, और कन्हैया ने थोड़ी मिट्टी भी खा ली। सखा बोले, सारे आज तो जाए कि हम तेरी मैया से शिकायत करेंगे, तेने माटी खाई है। कन्हैया बोले, मेरी मैया से मत कहियो ना, मैया पिटाई करेगी तभी तो मालूम पड़ेगी। तो बताए, पहले तू माखन की चोरी करके खावो तो माखन से तेरे पेट नहीं भरे, अब तू माटी खाए वो शुरू कर दिए, जरूर मैया से जाके कहेंगे। बलदाऊ जी को सहारो मिल गो, तो सखा कुछ गए दौड़े दौड़े और मैया से बोले, मैया देख आज कन्हैया ने माटी खाई है माटी। मैया बोली, अच्छा वो धारी को इतना बिगड़ गया है, माटी खाए वो शुरू कर दी, माटी खाए वो पेट खराब है जाएगा। मैया ने एक सांटी उठाई, आज बाकी पिटाई करूंगी, बहुत बिगड़ गए वो। मैया दौड़ी दौड़ी आई और आकर के कन्हैया को हाथ पकड़ लियो, क्यों रे नटखट। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोली, सागृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हिते सिड़ी यशोदा भय संभ्रांतन प्रेक्षणाक्षम भासत। यशोदा हितैषिणी, सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, सागृहीत्वा करे कृष्णम, मैया ने आकर के कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, क्यों रे नटखट। हितैषिणी, क्योंकि हित चाहती थी, मिट्टी खाएगा इसका पेट खराब हो जाएगा। मैया डांट लगाई खूब। अब मैया की डांट को देख करके कन्हैया की आंखें डर के मारे नाचने लगी, खूब भयभीत है गए। मैया के हाथ में सांटी है और मैया कान पकड़ के खड़ी हो गई, क्यों रे नट माटी खाता है।
कस्मात मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहे बदन्ति ताव काहे ते कुमारास्ते अग्रजो अप्ययम्।
कस्मात मर्द मदांतांतमन मैया क्या क्यों रे बंदरों के मित्र नटघट तेने माटी क्यों खाई। और देख तू ये समझे कि तू आज झूठ बोला कि मैंने नहीं खाई है तो बदंत ताव का ही ए थे कुमार जितने जितने ये सब बालक हैं तेरे सखा सबके सब कह रहे हैं सबके मुंह से ये निकल लिया हाँ मैया कन्हैया ने माटी खाई है सबके सब सखा तेरे बोल रहे और अग्रजो अपी तेरा अग्रज भी कह रहा है कि तेरे माटी खाई है। आज तेरी एक भी झूठी बात चलेगी नहीं बिल्कुल तेने माटी खाई है। कन्हैया मैया कन्हैया को हाथ कान पकड़े खड़ी है और कन्हैया बड़े भयभीत है रहे और कह रही मैया देख तो को देख के मैं बहुत डर लगे है मो को मारे मती।
अरे मारे मती मैया मारे मत मैया बचने भरवाए ले मारे मत मैया बचने भरवाए मारे मत मैया बचने भरवाए ले मारे मत मैया बचने भरवाए ले बचने भरवाए ले चाहे सौगंध धरले बचन भरे वाले सौगंध कवाए बचन भरे वाले चाहे सौगंध धरले बचन भरे वाले सौगंध कवाए मारे मत मैया बचन भरवाए मारे मत मैया
मैया देख अपने हाथ में ये छड़ी तो फेंक दे तेरे हाथ में छड़ी देख के मुझे बहुत डर लगे है। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन क्या सुंदर छवि है अरे जिनके भय से भी भय भयभीत होता है और मैया से कह रहे मैया मुझे बहुत डर लग रहा है अपने हाथ से छड़ी फेंक दे बड़ी सुंदर झांकी है मैया कान पकड़े खड़ी है नटखट पर तेने माटी क्यों खाई। कन्हैया क्या कह रहे मैया
मैया मोरी नीकन माटी खाई मैया मोरी नीकन माटी खाई मैया मोरी नीकन माटी खाई मैया मोरी यह सब बालक झूठ कहते हैं मिथ्या ही दोष लगाई
ये सब बालक झूठ कहते हैं मिथ्या दोष लगाई
मैं नवनीत दही पूरण मैं नूध दही सोपूरण मैं नवनीत दही सोपूरण
मैं नवनीत दही सोपूरण
रज की कमाई तो मैया बोली नीक नवासी
मैया बोली नीक नमाती खाई मैया बोली मैंने नमाती खाई।
कन्हैया बोले मैया मैंने नेकू माटी नहीं खाई है ये सबके सब सखा झूठ बोल रहे
ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्य गिरहस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम।
कन्हैया बोले मैया ना हम भक्षितमान अंबर, मैया मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई है। और ये सब सखा बोले सो, बोले सर्वे मिथ्या विसंसिना, ये सबके सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली अच्छा ये सब झूठे, तू हरिश्चंद्र सत्यवादी है और सब झूठे। अरे मैया देख मैं बता रहा हूं ना, मैंने बिल्कुल माटी नहीं खाई है। और देख
यदि सत्य गिरहस्त रही,
अगर तू इनकी बात को सही मान रही है,
समक्षम पश्य मे मुखम,
मैं तेरे सामने खड़ों की भाग थोड़ी गो, अगर मैंने माटी खाई होगी तो थोड़ी बहुत मेरे मोहड़े में लगी होगी, मेरे मुंह देख ले। मैया बोली हाँ दारी के अपना मोहड़ो खोल, अपना मुंह दिखाए, तेने माटी जरूर खाई है, तेरे मुंह में लग रही होगी। आहा
या विधि कह कर कृष्ण ने निज मुख दिया पसार, जसुमति हर के बदन में देखा सब संसार।
जब मैया ने कही अपना मोहड़ो खोल, तो कन्हैया ने अपना मुंह खोल दियो। जैसे ही लाला ने मुंह खोलो, तो मैया कन्हैया के मुंह में सारो संसार, अरे सारो संसार ही क्या, सारो ब्रह्मांड देख रही है। अरे ब्रह्मांड ही क्या, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड कन्हैया के मुंह में देख रही है मैया, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड। और उन ब्रह्मांडों में हमारे वाला ब्रह्मांड भी मैया ने देखा, जिस ब्रह्मांड में हम बैठे झांसी में ना, ये वाला ब्रह्मांड मैया ने देखा। और इस ब्रह्मांड में 14 लोक मैया ने कन्हैया के मुंह में ही देखे। इन 14 लोकन में हमारे वाला लोक पृथ्वी लोक, वो भी कन्हैया के मुंह में देख रही है मैया। और इस पृथ्वी लोक में जो 7 दीप हैं, 7ों दीप मैया ने कन्हैया के मुंह में ही देखे। और उन 7ों दीपों में जो हमारे वाला दीप है जम्मू दीप, वो भी कन्हैया के मुंह में ही मैया देख रही है। और जम्बू द्वीप जो 9 खंडे हैं, 9 वर्ष जिनमें भारतवर्ष जो हमारो वारो है, वो भी मैया कन्हैया के मुंह में भारतवर्ष देख रही है। इस भारतवर्ष में इतने प्रदेश हैं, इन सभी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश में जो मथुरा विराजमान है, मथुरा मंडल, मैया वो मथुरा मंडल भी कन्हैया के मोहड़े में देख रही है। उस संपूर्ण मथुरा मंडल में गोकुल को भी कन्हैया के मुंह में मैया देख रही है। और गोकुल में नंद के आंगन में कन्हैया मैया अपने नंद महाराज को देख रही है, और कन्हैया को कान पकड़े जो खड़ी भई है ना, वो भी कन्हैया के मुंह में ही देख रही है।
रवि सस गिर सागर नदी, रवि सस गिर सागर नदी, निज समेत ब्रजराज लोक चतुर्दश अनिल नभो स्थिर चर जीव समा।
सबका सब मैया कन्हैया के मुंह में देख रही है। अब मैया तो बड़े आश्चर्य पड़गी, हो हो
क्या मुंह को सपना यह आया, अथवा ईश्वर की कोई माया, अथवा मम मति बोरी होई, मम सुत की सती।
मैया बड़े आश्चर्य में करी हैं, क्या मैं सपनों देख रही हूं, या कोई ईश्वर की ऐसी माया है, अथवा मेरी मति बो रह गई है, या फिर मेरे लाला की कोई शक्ति है। मैया बड़े आश्चर्य पड़ गई, आहा अब मैं समझ गई, मेरो लाला नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वामी है। जाके तो मोह में जाके उधर में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड है, ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड नायक है। अरे या को मैं अपनो लाला समझ बैठी, बड़ी भारी गलती करी मैंने, बड़े बड़े अपराध किए या लाला के प्रति, भगवान के प्रति, कभी आपको कान पकड़ लेती, कभी आपको डांटती फटकारती, बड़े अपराध करे हैं मैंने। अब मैया को ईश्वरी भाव आ गया, भगवान समझ बैठी मैया। जब ईश्वर भाव मैया को आयो, बासल भाव मैया को गायब है गो, और भगवत्ता मैया को देखने लगी।
काम पकड़ने की कमिया को डांटने की फटकार थी, बुरे अपराध करे हैं हम मैया को, हम ईश्वरी भाव आ गया, भगवान समझ में थी।
तो कन्हैया बोले अगर मैया ने हमको भगवान समझ लियो तो एक कोने में कहीं जो बिल्कुल जगह काम की नहीं होगी, बेकाम की जगह होगी, उस जगह पर हमको बिठा देगी फिर। और पूजा कैसी होगी फिर, जो आजकल के लोग करते हैं, सुबह शाम थोड़ी चिनौरी लगाए देंगे मुंह से, मोहड़े पर चिपटा देंगे चिनौरी या बतासे, बस तुम ये बतासे खा के रहो, या थोड़ा बहुत कभी दूध पिला दें, और स्वयं बढ़िया बढ़िया अकौड़े पकौड़े और लहसुन प्याज के क्या क्या तड़का लगा के खाएंगे, और भगवान घर में रख लेंगे थोड़ा, बस वही भोग लगा, चिनौरी खा लियो तुम, 10 रुपए की चिनौरी एक महीना तक चल जाए, खूब तुम्हारा भोग लगता रहेगा। ये और स्वयं बढ़िया बढ़िया क्या बना के खाएंगे। लेकिन भगवान ने गीता में हमें बड़ा बहुत बढ़िया शिक्षा दी है, यज्ञ शिष्टा सेना संत मुच्यंते सर्व किलमसई भुंजंते ते पघम पापा ये पचन क्यात्मकारुणा। भगवान ने गीता के 3rd अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि यज्ञ शिष्टा सेना संत मुच्यंते सर्व किलमसई। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे जो भक्त होते हैं वैष्णव संत लोग, वो सभी प्रकार के पापों से छूट जाते हैं। कैसे छूट जाते हैं, बोले यज्ञ शिष्टा सना संत, ऐसे संत यज्ञ में अर्पित किए हुए अवशिष्ट को यानी मुझे भोग लगा करके प्रसाद खाते हैं, और प्रसाद खाने से मुच्यंते सर्व किल्म से ही सारे पापों से छूट जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करता है उसका क्या होता है, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति बिना भोग लगाए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और चट्टे पट्टे क्या क्या चकोड़े मकोड़े खाता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बिना हमें भोग लगाए, बोले भुंजन्ते ते त्वघम पापा, वो तो पाप को ही खाता है। ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी बिना भोग लगाए खाता है वो तो पाप को ही खाता है, ये भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा। लेकिन भक्त लोग क्या होते, बोले मुच्यंते सर्व किलमसी, वो सारे पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि वो प्रसाद को खाते हैं। तो प्रसाद खाने की बहुत बड़ी महिमा है, सभी को चाहिए कि बिना भगवान को भोग लगाए तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। भगवान ने कहा भी है यत करोसी यत स्नासी यत जहोसी दधास्यत यत तपस्यस कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। हे अर्जुन तुम जो भी खाते हो जो भी करते हो जो भी तपस्या करते हो सब मुझे अर्पित करो, भगवान स्वयं कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पा रहे क्योंकि गीता को पढ़ते नहीं, पर गीता हमें पढ़नी चाहिए। हिंदुओं का परम धर्म है कि हर व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी गीता की शिक्षा देनी चाहिए। आप किसी स्कूल में जाओ और स्कूल में हिंदू के बच्चे हों मुसलमान के भी बच्चे हों ईसाइयों के बच्चे हों और टीचर उनको खड़ा करे, भाई ये बताओ गीता के श्लोक किनको कितने याद हैं, तो एक भी बच्चा हाथ नहीं उठा खड़ा कर पाएगा। और मुस्लिम भाइयों के बच्चों को जो है बताओ किस किस को कुरान कौन कौन कुरान पढ़ के आया है, सब हाथ उठा दे, हम कुरान पढ़ के आए सब। लेकिन हिंदू के बच्चे एक भी गीता को पढ़ते स्वयं ही नहीं पढ़ते, बच्चे कहां गीता पढ़ेंगे। तो गीता पढ़ना बहुत परम धर्म है, गीता को हम पढ़ेंगे तो हम अच्छा उपदेश मिलेगा, बिल्कुल भगवान से ही सीधे उपदेश मिलेगा। क्योंकि गीता में कौन उपदेश दे रहे हैं, साक्षात भगवान उपदेश दे रहे हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, भगवान बोल रहे हैं उसमें, गीता साक्षात भगवान है। बपू के रूप में बाणी के रूप में भगवान आज भी हमारे बीच में, गीता में भगवान श्री कृष्ण आज भी मौजूद हैं, और भगवान के साथ साथ में प्रभुपाद जी भी गीता में मौजूद हैं, है ना, प्रभुपाद जी भी अपने ग्रंथों में मौजूद हैं। तो हमें ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो भगवान ने विचार कियो, कहीं मैया ने ये सोच ली कि मैं भगवान हूं तो एक अल्टरम बिठाए देगी और सुबह शाम थोड़ी चिनौरी को भोग लगाए देगी और आरती घुमा रही, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, और मांगेगी सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनखा जय जगदीश रे। मांगने की लिस्ट बहुत लंबी होगी और सेवा पूजा थोड़ी होगी। इसलिए अपनी ऐश्वरी शक्ति से कह रहे भाई तुम जाओ पिता हो जाओ, मेरी माँ को भी वात्सल्य भाव आने दो। तो मैया को तुरंत वात्सल्य भाव आ गए, भगवान की लीला शक्ति ने एक काम दिखाई दियो। अब मैया बोली अरे अरे मैं कोई सपनों देख रही होंगी, मेरा लाला है छोटो सा लाला। तुरंत मैया ने कन्हैया को गोद में ले लियो, स्तन पान कराए वो लगी। देख लाला मैं जा वजह से कह रही तू माटी खाए वो तो तेरे पेट खराब हो जाएगो, जा वजह से कह रही भाई वात्सल्य भाव। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन ऐसे एक नहीं भगवान श्याम सुंदर की अनेकों बड़ी सुंदर लीलाएं हैं, इतनी सुंदर लीलाएं हैं। महाराज परीक्षित बड़े गदगद हो रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ सुन रहे हैं और बोले प्रभु। महाराज परीक्षित बोले गुरुजी भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाएं बड़ी सुंदर लग रही हैं, मन को मनोहर, मन को हरने वाली हैं, हृदय को बड़ा सुख प्रदान करने वाली हैं। और प्रभु मैया यशोदा ने ऐसो कौन से जन्म में बड़ो भारी पुण्य कियो हो वो जो कन्हैया इनको स्तन पान करते बड़े प्रेम से, बड़े बड़े देवता नंदन कानन बन के फलन को लेकर के भगवान के सामने भेंट समर्पित करते हैं प्रभु स्वीकार करो। नंदन कानन के फलों को ही भगवान स्वीकार नहीं करते, बड़े बड़े यज्ञों से भी तृप्त भगवान नहीं होते। आज तक बड़े बड़े यज्ञ भगवान को तृप्त नहीं कर पाए और मैया यशोदा के दूध को पी करके ऐसे तृप्त हो जाते हैं, ऐसे तृप्त हो जाते हैं मानो अमृत ही अमृत का पान कर रहे हैं क्या। अरे सारे वेद उपनिषद सांख्य योग और भक्तजन जिनके महात्म्य गीत गाते गाते अघाते नहीं उन्हीं भगवान को यशोदा मैया अपना पुत्र मानती है। मैया ने कौन सो ऐसा पुण्य कियो। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन ये मैया पहले धरा और ये बस ये नंद महाराज द्रोण नाम के वसु थे, द्रोण नाम के वसु उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी हे प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो हम पृथ्वी पर जन्म लें तो भगवान के प्रति हमारा खूब प्रेम बढ़े, खूब प्रेम बढ़े और बालक की तरह वात्सल्य भाव से उनका हम पालन लालन पालन करें। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करवे के लिए यद्यपि जन्म तो लियो उन्होंने मथुरा में वसुदेव जी के यहां, क्योंकि वसुदेव जी पहले सुतपा और प्रश्न गर्भी थे वसुदेव और देवकी, तो उन्होंने भगवान को पुत्र रूप प्राप्त करने में बड़ी भारी तपस्या करी तब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन द्रोण और धरा ने इतनी भारी तपस्या नहीं करी। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि द्रोण और धरा ये भगवान के शाश्वत माता पिता हैं, गोलोक में भी रहते हैं। बहुत प्रेम था कन्हैया के प्रति और कन्हैया की प्राप्ति तो प्रेम से ही होती है।
मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। अरे मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, हाँ कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय, हाँ कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। अरे मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न यमुना सरस्वती में, लखाया
प्रेम सरोवर में जब डूबे प्रभु की झलक दिखाई
हरि मोहन प्रेम
भजन तो लंबा है पर गानी भाई है यानी बिना प्रेम के कन्हैया की प्राप्ति होती नहीं। इसलिए चेतन महाप्रभु ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता तभी है। मानव जीवन सार्थकता क्या है? बोले कृष्ण प्रेम। मानव जीवन का चरम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जब प्राप्त हो जाता है तो प्रेम के बंधन में कन्हैया बस बंध जाते हैं। शोकदेव गोस्वामी कहते राजन ऐसी भगवान की एक नहीं अनेकों अनेकों बड़ी सुंदर लीला है।
उली कदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निरवमंथ स्वयं दधि।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन एक कदा एक दिन की विशेष लीला
यशोदानंद गेहिनी
जो नंद महाराज की यशोदा जी नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी एक दिन सभी दास दासियों को अन्य सेवा में नियुक्त कर दिया।
कर्मांतर नियुक्तासु
सभी दास दासियों को अन्य दूसरे कार्य में नियुक्त कर दिया।
निरममंथ स्वयं दधि
मैया ने स्वयं ही दध मंथन करने को विचार कियो। मैया ने विचार कियो कि मेरो लाला कन्हैया बाहर माखन की चोरी करके क्यों खावे? कारण क्या है? क्या मेरे घर को माखन खट्टो बने जो मेरे घर में माखन नहीं खावे, या कोई बाहर कोई माखन मीठो लगे? ऐसो कारण कहां है? लगे मेरो माखन खट्टो होए जा वजह से कन्हैया घर में माखन नहीं खावे। काऊ दिन अपने हाथों माखन निकाल के खवाऊंगी लाला को मीठो मीठो। पर मैया जब माखन चलावे की प्रयास करे जैसी माखन की मटकी के पास माखन मथानी के पास जब माखन चलावे के लिए तो अन्य बहुत सारी दासियां थी क्योंकि मैया यशोदा रानी थी ब्रज की रानी बहुत सारी दासियां थी। जैसे ही मैया मटकी के पास जाए मथानी के पास अरे लाओ थोड़ो मैं माखन चलाऊंगी तो गोपियां कहती अरे मैया हमारे हो तो भाई भला तुम माखन चलाओगी पर हमारो क्या होएगो? अरे तुम केवल अपने लाला को लाड़ लाती रहो केवल लाला को प्यार करती रहो अरे माखन घर के जितने काम धंधे सब हम करती रहेंगी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मैया को कभी भी माखन चलाए को मौको नहीं मिल पाओ तू और कभी कभी गोपियां मान जाती तो रोहिणी नहीं मानती अरे बहन भला हमारो का होगा पर हमारे हो तो तुम माखन चलाओगी तो कभी रोहिणी देवी उनको माखन नहीं चलाने देती। कभी भी मैया को कभी मौको नहीं मिलो दध मंथन कर देखो। पर एक कदा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक कदा मतलब कोई विशेष जीव गोस्वामी कहते हैं कि एक कदा का मतलब है कि सभी ब्रजवासी कार्तिक में इंद्र की पूजा किया करते थे हर साल इंद्र की पूजा किया करते थे तो उस दिन इंद्र की पूजा करने के लिए सब गोप इत्यादि एक दो दिन पहले ही व्यवस्था में लग जाते हैं। एक दिन पहले ही व्यवस्था देखते हैं किसको क्या सेवा करनी है किसको क्या सेवा करनी है ना। अब जैसे यहां हमारे ब्रजभूमि प्रभु झांसी मंदिर के प्रेसिडेंट हैं अब ये जो कार्य जन्माष्टमी के उपलक्ष में कथा भी हो रही है और भी बहुत सारी सेवाएं तो इन सेवाओं को पहले से ही सब भक्तों को बुला करके बांट देते हैं कि तुम्हारी ये सेवा रहेगी तुम्हारी ये सेवा रहेगी तुम्हारी ये सेवा रहेगी। उसी प्रकार नंद महाराज ने सब ब्रजवासियों इकट्ठो करके सबकी अलग अलग सेवा बांट रहे, अलग अलग सेवा में लगा दियो और गोपियों को भी अलग अलग सेवा में लगा दियो। मैया बोली गोपियों से, देखो कल इंद्र की पूजा होगी, जा वजह तुम जाकर के और कुछ बाहर के काम धंधे देखो, आज घर को काम धंधो सारो में देख लूंगी। तो मैया ने दास दासियों को, सब दासियों को कर्मांतर नियुक्त आसु अन्य कार्य में नियुक्त कर दिया। उस दिन रोहिणी भी घर में नहीं थी, रोहिणी देवी, क्योंकि उपनंद की पत्नी जो थी बार बार उनसे आग्रह करती बहन कभी हमारे घर चलो, रोहिणी देवी से कई बार बोलती थी, तो उस दिन रोहिणी देवी भी उपनंद की पत्नी के आग्रह से वो उनके घर चली गई बलराम जी को लेके। आज नंद भवन में केवल मैया यशोदा और कन्हैया है। अब मैया ने विचार किया कि कल को सुबह ही सुबह बहुत बढ़िया माखन निकाल के अपने हाथ से माखन निकाल के लाला को मैं खिलाऊंगी, मीठो मीठो माखन। जो बाहर को माखन खाए वो भूल जाएगो, जब बढ़िया वस्तु मिलेगी खाए को तो खाए को चोरी करे वो बाहर। तो मैया ने बड़े प्रेम के साथ बढ़िया दूध को खूब गर्म कियो, रात्रि को खूब बढ़िया दूध गर्म करके, और जब दूध न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडो, तब बावी मैया ने जामन डालो जमावे के लिए कि बढ़िया एकदम कटे में अच्छा दही बने। मैया दूध को जमा के और कन्हैया को अपने एक साथ में लेकर के पलंग पर रात्रि को सो जाती है कि सुबह ही बढ़िया बढ़िया दही निकाल के खिलाऊंगी लाला को, अच्छो माखन मीठो मीठो। मैया कन्हैया को साथ में लेके पलंग पर सो रही है और जो लालटेन थी ना, लालटेन की बत्ती बहुत कम धीमी कर दी मैया ने, पहले ये बल्ब बल्ब नहीं थे, वो जीरो वाट का बल्ब लालटेन की धीमी बत्ती कर देते, वो जीरो वाट का बल्ब बन जाता है। मैया ने लाइट धीमी करी बत्ती लालटेन की और मैया कन्हैया को लेके पलंग पर सो जाती है, पर मैया को नींद नहीं आ रही है, कब जल्दी दिन निकले, तब अपने हाथों दद मंथन करके लाला को मीठो मीठो माखन खिलाऊं। जल्दी जल्दी घड़ी की ओर देखती, कब 4 बजे जल्दी उठो। बस मैया हाँ सुबह ही सुबह उठी ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे ही मैया उठन लागी कन्हैया थोड़े मैया के बिल्कुल चिपक के सोते थे, ये बालक की छोटे बालक की आदत होती है। जैसे ही मैया उठन लगी तो कन्हैया थोड़े ने हिलने लगे, मैया ने थप थपी, लाला सो जा अभी रात के, सो जा लाल मेरे सो जा, थोड़ी थपथपी लगाई लाला को सुलायो, और मैया धीरे 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 पलंग से नीचे उतरी कि लाला की नींद न खुल जाए। मैया उतर के लालटेन की बत्ती थोड़ी तेज कर दी और फिर मैया ने पूरे घर को झाड़ो और बुहारो, घर की सफाई करी, फिर मैया ने ठीक से बढ़िया स्नान कियो, स्नान करके बढ़िया अच्छे अच्छे धुले हुए वस्त्र पहने मैया ने, और मैया अब माखन चलावे के लिए आंगन में कहां बैठती है, बस ऐसी जगह मटकी को रख लेती है कि जहां से कन्हैया भी दिखते जाएं, और पास में ही एक अंगीठी पर पद्मगंधा गाय का दूध भी अंगीठी पर गर्म करने के लिए रख दिया। मैया की नजर दोनों तरफ, इधर दूध की तरफ भी नजर है और कन्हैया की तरफ भी नजर है, कहीं लाला उठ जावे वो तो लाला रोबत रहेगो मुख मालूम पड़ेगी नहीं, तो मैया बीच में मटके को लेके बैठ जाती है दोनों तरफ उसकी नजर हो। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन अब मैया दद मंथन करने बैठी, आहा यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानि च दध निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायतः। मैया दध मंथन कर रही है और दध मंथन करते समय गीत भी यानी कीर्तन भी करती आ रही है। तद बाल चरितानि च, कौन सा कीर्तन, जो अब तक उनके लाला ने जो जो लीलाएं की थी स्मरंती, उन्हीं को स्मरण करके गायतः, उन्हीं का मैया कीर्तन करती जा रही, गाती जा रही। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन बड़ी सुंदर छवि है मैया की, आह ऐसी सुंदर छवि है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं मानो आंखों से देख रहे हैं मैया की छवि को और मुख से वर्णन कर रहे हैं।
क्षोमं वासः पृथुकटतटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्नेहस्नतकुचुगं जातकंपं च सुभ्रु रज्ज्वाकरसस्रं भुजचलत् कंकणौ कुण्डले च चिन्नं वक्त्रं कवर विगलत मालती निर्ममं।
सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते राजन मैया जब दद मंथन कर रही है, बड़ी सुंदर छवि मैया की लग रही है। कैसी है मैया? बोले क्षमम बास प्रतकटते विभ्रति सूत्रनद्धं। मैया ने नहाए धो करके बढ़िया से वस्त्र, पीले वस्त्र पहने, मैया ने पीलो लहंगा पहनो, रेशमी लहंगा और पीली रेशमी ओढ़नी ओढ़ी मैया ने ऊपर से। और मैया ने, क्योंकि प्रथुकट तटे, मैया की कमर थोड़ी मोटी थी, थोड़ी मोटी ताजी सोदा मैया खाए पिए घर की, है ना, खूब दही दूध घर में हो मैया खूब खाए पिए घर की, खूब मोटी ताजी मैया सोदा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रथुकट तटे मैया ने अपनी मोटी कमर में और बड़ा सुंदर रेशमी को लहंगा पहनो और रेशमी डोरी से कसके बाकू बांधो, क्योंकि परिश्रम करना है, दद मंथन चलाने के ढीलो पड़ जाए। और मैया दद मंथन कर रही है, बड़ी सुंदर छवि है, पुत्र स्नेह स्नुत कुचुगम जात कंपम च सुभ्रु, कहते हैं वो सुंदर भौं वाली मैया सोदा।
राधा गोविंद भगवान की जय।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन सुभ्रु मैया सुंदर भौं वाली यशोदा, अरे भगवान की माँ है, कितनी सुंदर सुंदर भौं वाली। ऐसा नहीं किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपनी मेकअप करा के मैया आई हो, वो प्राकृतिक है उसकी, सुभ्रु सुंदर भौं वाली मैया यशोदा। और बड़ा पीला पीला लहंगा पहन करके, पीली ओढ़नी ओढ़ करके, और मैया दद मंथन कर रही है और पुत्र के स्नेह से उसके स्तनों से दूध की धारा अपने आप टपक रही है।
रज्ज्वाकर सस्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च।
और मैया जब जब रस्सी को खींच रही है, रज्ज्वाकर भुज चलत, मैया के हाथ चल रहे दोनों,
कंकणौ कुंडले च,
दद मंथन करते समय मैया के कुंडल भी हिल रहे हैं और जो हाथ में कंकड़ है वो भी कंकड़ भी हिल रहे हैं। उन कंकनों की बड़ी सुंदर आवाज, दही मथने की घर घर की बड़ी सुंदर मधुर आवाज, और मैया भी स्मरंती तान गायत, कन्हैया की लीलाओं का स्मरण करके वो भी कीर्तन गायन करती आ रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन आहा बड़ी सुंदर छवि है, थोड़ा ध्यान करके देखो कि मैया की क्या सुंदर छवि है। मैया दद मंथन कर रही है और कन्हैया का गुणगान भी गाती आ रही है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा, तीनों प्रकार से मैया कन्हैया की सेवा में लगी भई है। आहा जब मैया जब दद मंथन कर रही है तो परिश्रम करने से मैया के मुखमंडल पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें आ गई, और मैया के मुखमंडल पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें हैं, और मैया की चोटी में जो मालती की माला लगी भाई, बड़े अच्छे फूलों की माला, वो सब मालती के फूल खिसक करके मैया के पैरों में गिर गए। मानो ये मैया भगवान की कितनी बड़ी भक्त है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा, भगवान की सेवा कर रही है काया से वाणी से मन से, ऐसे महाभक्त के सर पर रहने के योग्य नहीं है, ऐसे भक्त के तो चरणों में ही हमें रहना चाहिए। मानो ऐसो सोच करके मैया की चोटी में लगे हुए फूल सब मैया के पैरों में आकर के गिर गए। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन बड़ी सुंदर छवि है मैया, बड़ी गाती जा रही है, क्या गाती जा रही है,
मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से मेरा लाए, मेरा गोपाल
गोपाल गिरधारे जमाने से निराला है।
लाए रसीला है न बोरा है न काला है।
नीला है रसीला है न बोरा है न काला है।
मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है।
मेरा गोपाल
मैया यानी यानी गीतानी तदवाल चरितानि च दध निर्मंथने काले स्मरंती तान गायत। मैया दधि मंथन कर रही है और जो जो लाला की लीलाएं स्मरण होती आ रही हैं वही गायन कर दिया रही। मेरो लाला जमाने सो निरालो है। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन जब मैया शरीर से वाणी से मन से सभी तरह से कन्हैया की सेवा में लगी भई है और बड़ा ही मधुर कीर्तन करती जा रही है। कन्हैया के कान में जैसे ही मधुर कीर्तन पड़े तो कन्हैया से रहो नहीं जाए। फिर कीर्तन में बहुत बड़ी शक्ति है, कीर्तन कन्हैया को खींच लेता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है यत फलम न अस्ति तपसा न योगे समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल अन्य योगों में समाधि लगाने से योग करने से ध्यान करने से जो फल नहीं मिलता है वही फल कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से बड़ी आसानी से मिल जाता है। इतनी शक्ति है कृष्ण कीर्तन में। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन अब कन्हैया उठे पलंग सो। जैसे ही कन्हैया उठे तो उठते ही उन्होंने चारों तरफ देखा। वो बिस्तर को टटोला हमारी मैया किधर गई आज। जब मैया नहीं दिखी उन्हें अपने बेड पे बिस्तर पे तो कन्हैया चारों तरफ देख करके बड़े आश्चर्य में अरे आज मैया हमारी कहाँ चली गई बताओ। आज तो हमसे हमको सोबतो ही छोड़ गई और दिन मैया हमको उठावती लाला जल्दी उठो और आज मैया पतो नहीं कहाँ चली गई। उठे श्री मां जी उठ करके पहले आंख ही मिलन लगे। मैया मोटो मोटो काजल लगाती बड़े बड़े नेत्रन जैसे ही आंख ही मिली सब कपोलन पे काले काले गाल हो गए उनके। सुंदर तो है ही उनके मुख पर घुंघराली चिकनी चिकनी अलकें लटकी हुई हैं कमल जैसो मुख है और जब काजल से कालो उनको मोह है वो और सुंदर लगन लगे। सुंदर तो है ही बड़े सुंदर चारों तरफ देख रहे मैया नहीं दिखी तो कन्हैया फिर पलंग से उतरनो चाहे पर पलंग ऊंचो श्रीमान जी छोटे कैसे उतरे है ना। पलंग थोड़ा ऊंचा था तो बड़ी चतुराई से पहले पैर नीचे लटकाए दे पेट लगाए पार्टी से पेट पार्टी से लगा के पैर नीचे में लटकाए के बड़ी आसानी से उतर गई। आहा सुखदेव गोस्वामी कहते राजन बोले तान स्तन्य काम आसाध्य मथनंती जननी हरि गृहीत्वा दधि मंथानं न्यसेदत् प्रीतिमावहम्। सुखदेव गोस्वामी ने एक नाम और रख दिया उनका क्या बोले ताम स्तन्य काम। वो स्तन यानी मैया का दुग्ध पान करने की इच्छा से स्तन्य काम और कन्हैया चले आ रहे हैं ठुमक ठुमक कहां बोले मथनंती जननी हरि जहाँ हरि की जननी यशोदा मैया जहाँ दधि मंथन कर रही और बस विभोर होकर के कीर्तन गावती आ रही और बड़े प्रेम के साथ दध मंथन मैया कर रही। मैया को कोई पतो ही नहीं कन्हैया बिल्कुल पास में जाकर पहुंच गए गृहीत्वा दधि मंथानम कन्हैया ने दध मथानी पीछे से पकड़ ली दोनों हाथों से। जब दध की मथानी कन्हैया ने पीछे से पकड़ ली दध की मथानी एकदम रुक गई। मैया ने विचार किया इसमें अचानक एकदम ब्रेक कैसे लग गो ये मथानी एकदम अचानक कैसे रुक गई। मैया ने पीछे मुड़ के देखा आहा मैया के नीलमणि श्याम सुंदर पीछे खड़े हुए। मैया गदगद हो गई कन्हैया मैया की गोदी में चढ़ गए और कन्हैया बस मैया को स्तन पान करने लगे और मैया बड़ी विभो रह रही है।
लाला पीबो पे रुच धारी, लाला पीबो पे तुम्हारे मुख पंकज की छवि से मैं जाऊं बलिहारी। लाला पीबो पैरुचिहारी, लाला पीबो पैरुचिहारी।
मैया कह रही है लाला, अरे खूब प्रेम के साथ माखन को दूध को पियो, मैं तुम्हारे मुख को देख करके बाहरी जा रही हूँ। मैया को लाला को स्तन पान करा रही है और दद मंथन करती आ रही है। मैया की नजर कन्हैया की ओर है, कन्हैया के मुखमंडल को देख रही है और कन्हैया भी मैया के मुख को देख कर
मैया तो प्रेम की पुजा रहे हैं और कन्हैया प्रेम के भूखे। मैया को इतना वास्तव प्रेम के दूध क्या मैया के स्तन से अमृत की धारा टपकती रहती है, इतना पुत्र स्नेह मैया। और माताओं को वास्तव में दूध नहीं, उनका हृदय का रस होता है, हृदय का रस जो अपने बच्चों को पिलाती है, माताओं का हृदय का रस होती है। पर कन्हैया बड़े प्रेम के साथ दूध पीते जा रहे हैं। इधर पास में ही पदम नंदा भैया को दूध गर्म है, रो अंगीठी पर दूध ही विचार की हो, अरे भाई देखो मैया यशोदा बासन में मैया है, मैया तो प्रेम की सागर है,
प्रेम की कमी कोई है नहीं और कन्हैया प्रेम के बस भूखे हैं, इनकी तृप्ति प्रेम से होती नहीं है। मैया की दूध की कमी पड़ेगी नहीं, मेरो का होगो फिर, मेरो जीवन व्यर्थ नहीं जाएगो, क्योंकि भगवान से संबंधित जो वस्तु होती है तदी वस्तु कहते हैं, तदी वस्तु वो भी चिन्ह में होती है। उसने सोचा मेरा फिर क्या होगा, इससे तो मर जाना ही ठीक है। वो दूध उफन करके अग्नि में जलन लगो, मैया की दृष्टि पड़ गई, भागी भागी आई, कन्हैया को नीचे उतार दियो। जैसे ही कन्हैया को नीचे उतार दिया मैया ने और दूध को समारवे के लिए गई, तो कन्हैया को क्रोध आ गयो। देखो मैया को दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं है। मैया को दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं है, जो मैं जमीन पटक गई और दूध को समारवे गई है मैया, अब तो क्रोध में आ गए। क्रोध में आ गए तो आसपास देख रहे, उन्हें एक बस एक लोड़ा मिल गया, जो सिलबट्टा होता है ना, वो पत्थर मिला और उसको उन्होंने बस उस मटके में ऐसा मारो नीचे पहदे में, धड़ाम से मटका टूट गया। बहुत बड़ा मटका था, दही में थोड़ा बहुत दही था नहीं, बहुत सारा दही था, सब दही फैल गया, पूरे आंगन में दही दही। कन्हैया के पैर भी सन गए दही में। अब कन्हैया ने देख कहा, रे भाई, मन में सोचा बहुत भारी नुकसान है गो, ये तो पिटाई हमारी ज्यादा ही होगी, अब क्योंकि नुकसान ज्यादा हुआ है तो पिटाई भी ज्यादा होगी। कैसे बच्चे पिटाई थे, तो श्रीमान जी वैसे ही थूक के आंसू लगा के झूठ मूठ रोवन लगे, ऐसे ही क्या रोएंगे तो हो सकता है रोने से हमारी पिटाई बच जाए, क्योंकि छोटे बच्चों से कोई नुकसान हो जाए तो पहले से ही अपने आप पहले ही रोने लगते हैं कि हो सकता है हमारी पिटाई बच जाए, ऐसे ही रोवन लगे झूठ मूठ को। पर विचार कियो रोने से भी पिटाई बचने वाली नहीं, नुकसान ज्यादा ही भयो है मारो, यहां से खिसक लेना ही अच्छा है। अब तो वहां से वो बस चल पड़े, कहां जा रहे हैं, जहां दूसरे कोठे में, वहां से थोड़ी दूरी पर दूसरे कोठे में जो माखन को भंडार हो, और माखन के भंडार में वह कोठे में जाकर क्यों घुस गई, और वहां बड़े बड़े बढ़िया मटका रखे भाई दही के माखन के, वहां जाकर के खूब ऐसे माखन खा रहे हैं मानो हो कितने दिन के भूखे। और सभी बंदरों को बुला लिया, बहुत सारे बंदर आए गए, खूब बंदरों को माखन खिला रहे हैं, स्वयं माखन खा रहे हैं। इधर मैया जब दूध को संभाल के आती है, तो जैसे ही उस स्थान पर आई तो आकर के देखा मटका टूटा पड़ा है, माखन फैला हुआ है। मैया ने चारों तरफ देखा, ये किसकी करतूती है भाई, कन्हैया नहीं देखे, लगता है उस नटखट की ये करनी है, वाई नहीं ये मटकी तोड़ी होगी, बहुत बिगड़ गया है। मैया पहले तो हंसी, फिर बाद में मैया को क्रोध आओ, अरे देखो जाने कितना नुकसान किया, दही फैल को कोई बात नहीं, ये जो माखन की जो मटकी कमोरी ना, ये मेरे सासू के हाथ की बड़ी संभाल के रखी मैं जाकू, ये मेरे सासू के हाथ की निशानी, तो नटखट ने वो भी तोड़ दी। अब मैया को क्रोध आयो, बाने एक छड़ी उठाई, पर है किधर ये, कहां गयो, तो श्रीमान जी के जो पैरन के चिन्ह बन गए ना दही से सने हुए, तो मैया उन चिन्हन को देखती भाई, और मैया वही पहुंची, कन्हैया बस माखन खाते जा रहा हूं, बार बार देख लेते हैं कहीं मैया तो नहीं आ रही है। अब जैसे ही कन्हैया की दृष्टि पड़ी मैया पर, तो बस उखल पर चढ़ के माखन खा रहे, झलक झट से छलांग लगाई और बड़ी तेजी से मुट्ठी बांध के ऐसे भागे बड़ी तेजी से कि मैया के हाथ में छड़ी है, पिटाई होगी। मैया बोली दारी के भागो कहां जा रहा, ठहर जा तेरी। कन्हैया बोले मैया मैं ठहर जाऊंगा तो फिर मेरी पिटाई करेगी, नहीं तेरी पिटाई थोड़ी, या तो तेरी आरती उतारूंगी, तेरी पूजा करूंगी, मेरे हाथ में तो आ कम से कम। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन आगे आगे कन्हैया बछड़े की तरह उलटे भाई जा रहे हैं, नटखट है ना, और पीछे पीछे मैया बड़ी मोटी ताजी मैया, इतना नहीं भगो जा रो मैया पे, भागते भागते मैया हाथ भी गई, क्योंकि मोटी ताजी ज्यादा थी भैया। मैया आपको भागते भागते पसीना आएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते राजा बड़ी सुंदर झांकी है, ध्यान करके देखो।
उलझा को योगी यत्न कर, जाकूं योगी यत्न कर, ध्यान करत रह जात, ताहे अतीन्द्रिय कृष्ण को ग्रहण करे किम मान।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन अरे जिन भगवान श्री कृष्ण जो परम परमात्मा हैं, बड़े बड़े योगी ध्यान से उनको पकड़ने ध्यान में लाने का बड़ा प्रयास करते हैं, योगियों की ध्यान की पकड़ में भी नहीं आते, तो भला एक मैया एक गोपी ग्वालिनी कैसे पकड़ सके, नहीं पकड़ पा रही मैया। कन्हैया भागते जा रहे हैं और मैया पीछे पीछे भागती जा रही है, पर मेरी समझ में ऐसी आ रही है कि कन्हैया को आज तो भागल नहीं, आज बांध के मन डालो उन्हें, अगर बांध के डाल देंगे खोल नहीं पाएंगे, बहुत समय लग जाओ, रात भर बंधे पड़े रहेंगे वो, है ना। तो यही हम कथा को विराम देंगे एक भजन गाते हुए, बड़ा सुंदर भजन है।
अब आई बसंत बहार, अब आई बसंत बहार, चलो सखी कुंजन में वृंदावन में, अब आई बसंत बहार, चलो सखी कुंजन में वृंदावन में, अब आई बसंत बहार, चलो सखी कुंजन में वृंदावन में, अब आई बसंत बहार, चलो सखी कुंजन में वृंदावन में। सखी कुंजन में वृंदावन में,
सखी कुंजन में वृंदावन में,
सखी